आज हम समूह के बंटवारे में मैन डेटा न्यूनियज के विचार का अध्ययन करेंगे। मैन डेटा न्यूनियज ने समूह को चार भागों में बांटा है, जो इस प्रकार से है। पहला, संरचित समूह यानी स्ट्रक्चरल ग्रुप। समाज में कुछ वैसे भी समूह होते हैं जो स्वतः धीरे धीरे विकसित होते हैं। ऐसे समूह योजनाबद्ध तरीके से विकसित नहीं होते हैं। इसमें एक किस्म की ऐसी व्यवस्था पाई जाती है जिसे समाजशास्त्रीय भाषा में संरचना कही जा सकती है, जैसे परिवार, जाति, जनजाति, गोत्र या वंश, राज्य इत्यादि। दूसरा, संरचित अर्धसमूह स्ट्रक्चरल क्वासी ग्रुप। कुछ समूह ऐसे होते हैं जिसमें स्पष्ट आंतरिक व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है। इसका स्वरूप अर्ध समूह जैसा होता है, लेकिन समूह के सदस्यों के बीच एक तरह की संबद्धता होती है। समुदाय, राष्ट्र, वर्ग, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तीसरा, आकस्मिक अर्ध समूह ओकेजनल और सर्कमस्टेंशियल क्वासी ग्रुप। समाज में कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जो काफी क्षणभंगुर होते हैं, जो किसी विशेष परिस्थिति में एकाएक उत्पन्न होते हैं और बिगड़ते रहते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे समूह कहना स्वीकार नहीं किया है। भीड़, जनसमूह इत्यादि ऐसे ही समूह के उदाहरण हैं। चौथा, कृत्रिम समूह आर्टिफिशियल ग्रुप। आधुनिक समाज में ऐसे समूहों की प्रधानता होती है जिसे हम विचार विमर्श कर निर्माण करते हैं। वैसे समूह अपने आप विकसित नहीं होते हैं, बल्कि इसे किसी योजना के तहत विकसित किया जाता है, जैसे नौकरशाही, धार्मिक समूह, राजनीतिक समूह, आर्थिक समूह, खेलकूद समूह इत्यादि। मकीवर एवं पेज ने समाज में पाए जाने वाले सभी समूहों को तीन भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है। पहला, क्षेत्रीय एकता वाले समूह। इसके सदस्य साधारणतः एक निश्चित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और इनकी कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं होती हैं। ऐसे समूहों के हित अत्यंत व्यापक होते हैं। सदस्यों के जीवन में एक प्रकार की समानता देखने को मिलती है। नगर, गांव, समुदाय, पड़ोसी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। राष्ट्र जैसे व्यापक समूह को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। सिख, बंगाली, मद्रासी इत्यादि बृहद समूह भी इसी श्रेणी में रखे जाएंगे। दूसरा, हितों के प्रति जागरूक लेकिन अनिश्चित संगठन वाले समूह। ऐसे समूहों में अपने हितों के प्रति एक किस्म की जागरूकता तो पाई जाती है, लेकिन साधारणतया इनमें निश्चित संगठन का अभाव हो पाया जाता है। भीड़, जाति, अभिजात वर्ग, प्रवासी समूह, प्रजातीय समूह इस प्रकार के समूहों का अच्छा उदाहरण है, जिसमें संगठन का अभाव होता है एवं इसमें लोगों में अपने हितों के प्रति बहुत स्पष्ट जागरूकता नहीं पाई जाती है। तीसरा, हितों के प्रति जागरूक समूह। ऐसे समूहों में अपने हितों के प्रति स्पष्ट जागरूकता पाई जाती है, साथ ही उनमें संगठन एवं संरचना भी पाई जाती है। चर्च, राज्य, परिवार, मजदूर संघ, मित्र मंडली, क्लब इत्यादि ऐसे समूहों के अच्छे उदाहरण हैं। व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस के आधार पर भी समूह का विभाजन संभव है। समाज में कुछ वैसे भी समूह होते हैं जिसमें सभी व्यक्ति लगभग समान स्तर के होते हैं। दूसरी तरफ कुछ वैसे समूह भी देखे जाते हैं जिसमें विभिन्न हैसियत और पेशे वाले व्यक्ति एक साथ जुड़े होते हैं। इसी तत्व को ध्यान में रखकर मिलर ने समूह को दो भागों में बांटा है। पहला विषम स्तरीय समूह यानी वर्टिकल ग्रुप और दूसरा सम स्तरीय समूह यानी हॉरिजॉन्टल ग्रुप। पहला विषम स्तरीय समूह यानी वर्टिकल ग्रुप। वैसे समूह विषम स्तरीय समूह कहे जाते हैं जिनके अंतर्गत सभी सदस्य विभिन्न स्तरों में विभक्त रहते हैं। जाति व्यवस्था इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि इनके सदस्य जाति व्यवस्था इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि इनके सदस्यों का पद प्रतिष्ठा एवं भूमिका एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आर्थिक समूह धार्मिक समूह या किसी अन्य समूहों में भी उच्च या निच कम या अधिक प्रतिष्ठित इत्यादि सभी प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। ऐसे समूहों में सदस्यगण स्वयं ही विभिन्न आधारों पर कई स्तरों में विभक्त रहते हैं। दूसरा सम स्तरीय ग्रुप हॉरिजॉन्टल ग्रुप। ऐसे समूहों में सभी सदस्य लगभग एक ही सामाजिक आर्थिक स्तर के होते हैं। मजदूर संगठन, रंगकर्मी संघ, शिक्षक संघ इत्यादि समूहों के को समस्तर समूह की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे समूहों में तुलनात्मक दृष्टि से सभी सदस्यों की हैसियत प्रतिष्ठा या सामाजिक आर्थिक स्तर आदि लगभग एक जैसे होते हैं। ऐसे समूहों की सर्वप्रमुख विशेषता यह होती है कि सदस्यों की सामाजिक स्थिति के कारण इनके सदस्यों में आपसी संबंध घनिष्ठ होते हैं। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। वे लोग अपने कार्यों एवं कुशलताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के समूहों का निर्माण करते हैं। कभी कभी इन समूहों का निर्माण स्वतः हो जाता है तो कभी कभी सोच समझकर करना पड़ता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर फिक्टर ने 6 प्रकार के सामाजिक समूहों की चर्चा की है जो इस प्रकार है। पहला परिवार समूह यानी फैमिली ग्रुप। परिवार हमारे समाज का सबसे बुनियादी समूह है। व्यक्ति अपने जन्म के साथ स्वयं को परिवार के बीच पाता है और यही उसका समाजीकरण होता है। इस प्रकार परिवार में व्यक्ति यौन प्रजनन एवं बच्चों के लालन पालन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक आवास में रहने के कारण परिवार व्यक्तियों की भावात्मक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। दूसरा शैक्षणिक समूह एजुकेशनल ग्रुपिंग्स। प्रत्येक समाज की बुनियादी आवश्यकता यह है कि वह आने वाली पीढ़ी को समाज की संस्कृति एवं आवश्यकताओं से अवगत कराए। इन कार्यों को पूरा करने के लिए समाज में अनेक शिक्षण संस्थाएं यथा विद्यालय महाविद्यालय इत्यादि होती हैं। आदिवासी समाजों में पाए जाने वाले युवा गृह इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। इस प्रकार की सभी संस्थाएं समूह हैं। तीसरा आर्थिक समूह इकोनॉमिक ग्रुप्स। समाज में रहते हुए हमें अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। वस्तुओं का उत्पादन एवं उनका उचित वितरण समाज की एक आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति विभिन्न प्रकार के आर्थिक समूह करते हैं, जैसे किसानों का समूह, मिल मालिकों का समूह, मजदूरों का समूह एवं व्यापारियों का समूह इत्यादि। चौथा राजनीतिक समूह पॉलिटिकल ग्रुप्स। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून और व्यवस्था पर निगरानी रखनी होती है। इसके लिए हमें अनेक समूहों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे राजनीतिक दल, पुलिस, न्यायालय इत्यादि। आदिवासी क्षेत्रों में पाए जाने वाली पंचायती व्यवस्था को भी राजनीतिक समूह का उदाहरण माना जा सकता है। पांचवा, धार्मिक समूह, रिलीजियस ग्रुप्स। प्रारंभिक काल से आज तक प्रत्येक समाज में धर्म का कोई न कोई स्वरूप अवश्य देखने को मिलता है। आधुनिक युग में भी जब भौतिकता पराकाष्ठा को छूने को है, फिर भी धर्म समाज का एक प्रमुख आधार है। धर्म एक माध्यम है जिसके सहारे व्यक्ति अपने आप को अध्यात्म से जोड़ता है। प्रत्येक समाज में धर्म के आधार पर बहुत प्रकार के संगठन पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगठन एवं संप्रदाय ऐसे ही समूहों के उदाहरण हैं। छठा, मनोरंजनात्मक समूह। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अपने अधिकांश समय विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में व्यतीत करता है, जो कभी कभी उबाऊ महसूस होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की इच्छा मनोरंजनात्मक कार्यों में समय व्यतीत करने की होती है। इस कार्य के लिए समाज में बहुत प्रकार के सांस्कृतिक एवं गैर परंपरागत समूह या मंडली होते हैं। नाटक मंडली, दूरदर्शन, सिनेमा इत्यादि ऐसे ही समूहों के उदाहरण हैं। आर के मॉर्टन ने सदस्यता के आधार पर समूह को दो भागों में बांटा है, सदस्यता समूह, मेंबरशिप ग्रुप एवं गैर सदस्यता समूह, नॉन मेंबरशिप ग्रुप। उन्होंने इस वर्गीकरण का जिक्र अपने संदर्भ समूह के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में किया है। पहला, सदस्यता ग्रुप। समाज में कुछ वैसे भी समूह होते हैं जिसके सदस्य हम जन्म से ही होते हैं, जैसे परिवार, धर्म, जाति, गांव, शहर, राष्ट्र इत्यादि। ऐसे समूहों को मर्टन ने सदस्यता समूह कहा है। कभी कभी विवाह के आधार पर भी समूह की सदस्यता प्राप्त होती है। पितृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत महिलाओं को विवाह के आधार पर सदस्यता प्राप्त होती है। आमतौर पर सदस्यता समूह का लगाव हमारे जन्म या विवाह से होता है। ऐसे समूह की तुलना समनर के अंतर समूह से की जा सकती है। दूसरा, गैर सदस्यता समूह। व्यक्ति जब व्यस्क हो जाता है तो वह विभिन्न प्रकार का ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करता है और बहुत प्रकार के ऐसे समूहों के संपर्क में आता है जिसका वह सदस्य नहीं है। कभी तो वह ऐसे समूहों का सदस्य हो जाता है तो कभी वह सदस्य नहीं बनना चाहता है। शिक्षा, पेशा, प्रवास, व्यवसाय इत्यादि के आधार पर व्यक्ति जीवन में बहुत प्रकार के समूहों का सदस्य बनता है तो कभी वह सदस्यता को प्राप्त नहीं भी करना चाहता है। ऐसे समूहों को मर्टन ने गैर सदस्यता समूह कहा है। यह बहुत कुछ बाह्य समूह की अवधारणा से मिलता जुलता है। बियर स्टेट ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समूह की तीन विशेषताओं की चर्चा की है, जैसे पहला, समूह की चेतना, दूसरा, सामाजिक अंतःक्रिया और तीसरा, सामाजिक संगठन। इन्हीं विशेषताओं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने निम्न चार प्रकार के समूहों का उल्लेख किया है। पहला, सांख्यिकी समूह, स्टैटिस्टिकल ग्रुप। इसकी चर्चा करते हुए बियर स्टेट ने कहा है कि यह ऐसा मानवीय समूह है जिनमें सामाजिक समूह की तीन विशेषताएं अर्थात समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक संगठन अनुपस्थित रहती हैं। वस्तुतः इन समूहों का निर्माण समाज के सदस्य नहीं करते हैं, बल्कि सांख्यिकी विशेषज्ञ एवं समाजशास्त्री गण अपने अध्ययन हेतु इन समूहों का निर्माण करते हैं, जैसे आयु समूह या लिंग समूह, शिक्षित या अशिक्षित समूह इत्यादि इसके उदाहरण हैं। सही अर्थ में इसे समूह नहीं कहा जाना चाहिए। सामाजिक समूह, सोसिएटल ग्रुप। इस प्रकार के समूह की चर्चा करते हुए बियर स्टेट ने कहा है कि यह वह समूह है जिसमें सामाजिक समूह की सिर्फ एक ही विशेषता अर्थात सदस्यों में समता की चेतना पाई जाती है। सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक संगठन जैसी विशेषताएं ऐसे समूहों में अनुपस्थित रहती हैं। ऐसे समूहों के सबसे अच्छे उदाहरण नृजातीय एवं एक भाषा भाषी समूह हैं। वर्तमान समाजशास्त्र में इसे भी समूह नहीं कहा जा सकता है। तीसरा, सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। इस प्रकार के समूह के संबंध में बियर स्टेट का कहना है कि ये ऐसे समूह हैं जिनमें सामाजिक समूह की दो विशेषताएं अर्थात समता की चेतना एवं सामाजिक अंतःक्रिया तो पाई जाती है, परंतु औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अभाव होता है। सहकर्मियों का समूह, परिवार, बच्चों की मित्र मंडली, भीड़, श्रोतागण इत्यादि ऐसे ही प्राथमिक समूह इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। चौथा, सहचारी समूह, एसोसिएशनल ग्रुप। ये ऐसे समूह हैं जिन्हें समाज के सदस्यगण जानबूझकर निर्मित करते हैं। इसमें सामाजिक समूह की तीन विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में ये औपचारिक समूह होते हैं जिन्हें समाज के सदस्य अपने कुछ खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर निर्माण करते हैं। ट्रेड यूनियन, क्रिकेट क्लब, राजनीतिक दल आदि इसके उदाहरण हैं। इन चारों प्रकार के समूहों के बीच क्या अंतर है, इसे बहुत ही सरल ढंग से बियर स्टेट ने एक सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। एक तरफ सारणी में ए बी सी डी, जहां ए स्टैटिस्टिकल है, बी सोसाइटल है, सी सोशल है और डी एसोसिएशनल है, और दूसरी तरफ स्टैटिस्टिकल का कॉन्शसनेस ऑफ काइंड नो, सोशल इंट्रैक्शन नो और सोशल ऑर्गेनाइजेशन नो, सोसाइटल का कॉन्शसनेस ऑफ काइंड यस, सोशल इंट्रैक्शन नो और सोशल ऑर्गेनाइजेशन नो, सोशल का कॉन्शसनेस ऑफ काइंड यस, सोशल इंट्रैक्शन यस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन नो, एसोसिएशनल का कॉन्शसनेस ऑफ काइंड यस, सोशल इंट्रैक्शन यस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन यस। बियर स्टेट ने कुछ अन्य प्रकार के समूहों की भी चर्चा की है, जैसे बृहद समूह लार्ज ग्रुप एवं लघु समूह स्मॉल ग्रुप्स, बहुसंख्यक समूह मेजोरिटी ग्रुप्स, अल्पसंख्यक ग्रुप अल्पसंख्यक समूह यानी माइनॉरिटी ग्रुप, दीर्घकालीन समूह लॉन्ग लिव्ड ग्रुप्स, अल्पकालीन समूह शॉर्ट लिव्ड ग्रुप्स, खुला समूह ओपन ग्रुप्स, बंद समूह क्लोज्ड ग्रुप्स, स्वतंत्र समूह इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, आश्रित समूह डिपेंडेंट ग्रुप्स, संगठित समूह ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, आश्रित समूह डिपेंडेंट ग्रुप्स, संगठित समूह ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एवं असंगठित ग्रुप असंगठित समूह अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इत्यादि। इन सभी समूहों का स्वरूप उसके नामकरण से ही स्वतः स्पष्ट हो जाता है, इसलिए अलग से इसकी चर्चा की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। समूह के इस वर्गीकरण के अलावा और भी कई तरह के समूह होते हैं, जिसमें से कुछ समूह निम्न हैं, जैसे योजनाबद्ध समूह, कॉन्ट्राइव्ड ग्रुप, संचयी समूह, कम्युलेटिव ग्रुप, संघर्ष समूह, इनकाउंटर ग्रुप, औपचारिक समूह, फॉर्मल ग्रुप, अनौपचारिक समूह, इनफॉर्मल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, स्वार्थ समूह, इंटरेस्ट ग्रुप, सीमांत समूह, मार्जिनल ग्रुप, क्षेत्रीय समूह, टेरिटोरियल ग्रुप, संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, गैर संदर्भ समूह, नॉन रेफरेंस ग्रुप, पृथकृत समूह, एलोपैट्रिक ग्रुप, एक स्थानिक समूह, सिंपैटिक ग्रुप इत्यादि। इन सभी प्रकार के समूहों का बारी बारी से विवेचना किया जाना यह जरूरी नहीं है। प्राथमिक या द्वितीयक समूह, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। समूह के आकार के आधार पर समूह को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप एवं दूसरा द्वितीयक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के बीच सिर्फ आकार का ही फर्क नहीं है, बल्कि समूह के अंतर्गत सदस्यों के बीच के संबंध के स्वरूप का भी फर्क है। हिंदी जगत में कुछ ऐसे भी लेखक हैं जिन्होंने अपने पुस्तक में यह लिख रखा है कि कूली ने पहली बार प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। यह सत्य नहीं है। कूली ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को अवश्य जन्म दिया, पर उन्होंने द्वितीयक समूह की बात कभी नहीं की। जब कूली ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र किया तो उसके आधार पर अन्य विद्वानों ने एक प्रतिकूल सामाजिक समूह की बात कही और तब से द्वितीयक समूह की चर्चा की जाती रही है। प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बीच के अंतर को स्पष्ट करने से पहले हमें प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सर्वप्रथम सी एच कूली की पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है। उनके अनुसार प्राथमिक समूहों से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक सहयोग की विशेषता होती है। ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस अर्थ में कि ये व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव और विचार के निर्माण में बुनियादी योगदान देते हैं। बाई प्राइमरी ग्रुप्स आई मीन दोज कैरेक्टराइज्ड बाई इंटीमेट फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कोऑपरेशन। दे आर प्राइमरी इन सेवरल सेंसेस बट चीफली इन दैट दे आर फंडामेंटल इन फॉर्मिंग द सोशल नेचर एंड आइडियाज ऑफ द इंडिविजुअल। प्राथमिक समूह का विचार कूली का समाजशास्त्र के क्षेत्र में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इस योगदान के लिए वे आज विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्हें भी ऐसा पूर्वाभास हुआ था कि उसके लिए वे भविष्य में जाने जाएंगे। उन्होंने स्वयं एक बार हंसते हुए कहा था कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के लिए उन्हें इस दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा। इस अवधारणा को प्रस्तुत करने के पीछे कूली का मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि मानव व्यक्तित्व के विकास में कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण या प्राथमिक भूमिका होती है, इसीलिए इन्हें प्राथमिक समूह कहा जा सकता है। कूली की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह में शारीरिक नजदीकी, घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक संबंध का होना आवश्यक है। कूली ने परिवार, पड़ोस एवं क्रीड़ा समूह को प्राथमिक समूह का एक अच्छा उदाहरण माना है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह की सबसे प्रमुख विशेषताओं में वयम भावना यानी वी फीलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक समूह अपने आप में बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ समूह है, जिसमें आमने सामने के संबंधों के अलावा एकता की भावना प्रबल रूप में पाई जाती है। सदस्यों में एक सामान्य सामाजिक मूल्य के प्रति कटिबद्धता पाई जाती है। कूली ने अपनी परिभाषा में जिस आमने सामने का संबंध का उल्लेख किया है, वह समाजशास्त्रियों के बीच काफी विवाद का विषय बन गया। डेविस ने कहा कि आमने सामने का संबंध प्राथमिक समूह का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि आमने सामने का संबंध रखते हुए भी कभी दो व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं पनपता है, एवं इसके विपरीत लंबे समय तक आमने सामने का संबंध नहीं रहते हुए भी घनिष्ठ संबंध पनप सकता है। उदाहरण स्वरूप, एक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी जो रोज एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं होते हैं। इसके विपरीत पिता पुत्र एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर रहते हुए भी आमने सामने के संबंध के अभाव में भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। ई फेरिश ने भी कहा है कि आमने सामने के संबंध के अभाव में भी सामाजिक निकटता पाई जाती है। नातेदारी समूह इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि लोग आमने सामने नहीं रहते हैं, लेकिन उनके बीच आपसी निकटता की भावना बहुत पाई जाती है। दूसरी ओर बियर स्टेट ने कूली के विचारों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्रदान करते हुए यह कहा है कि कूली के द्वारा उल्लेखित आमने सामने शब्द को शाब्दिक रूप में नहीं लेना है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप में लेना है। इस शब्द के द्वारा कूली मात्र संबंधों की घनिष्ठता का बोध कराना चाहते हैं। प्राथमिक समूह के प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला, लघु आकार यानी स्मॉलर साइज। प्राथमिक समूह तुलनात्मक दृष्टि से काफी छोटा समूह होता है। यह कहना मुश्किल है कि ऐसे समूह में अधिक से अधिक कितने सदस्य पाए जाते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि ऐसे समूह में अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। सीमित आकार के कारण ही सदस्यों में परस्पर अंतःक्रिया संभव है, जिसके कारण एक प्रकार की भाईचारे एवं आदान प्रदान वाली भावना का जन्म होता है। दूसरा, आमने सामने का संबंध, फेस टू फेस रिलेशनशिप। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच भौतिक या मानसिक समीपता पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि सभी सदस्य अपने बीच अनुभवों या विचारों का सहजता से आदान प्रदान करते हैं। आमने सामने का तात्पर्य प्रतिदिन एक दूसरे से मिलने रहने का नहीं है, जैसा कि कई लोगों ने लिखा है। ऐसे समूह में रहकर सदस्य सामाजिक जीवन की बुनियादी बातों को जानते हैं। कभी कभी आमने सामने की स्थिति के बावजूद लोग प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तीसरा, तुलनात्मक स्थिरता। स्थिरता के अभाव में घनिष्ठता की कल्पना नहीं की जा सकती। डेविस का विचार है कि समूह में जितनी अधिक स्थिरता होगी, सदस्यों के संबंधों में भी उतनी ही अधिक घनिष्ठता भी होगी। वास्तव में प्राथमिक समूहों का निर्माण जानबूझकर या योजनाबद्ध तरीके से न होने के कारण यह अधिक प्रभावी अस्थायी प्रकृति का होता है, और लोगों को इसकी सदस्यता से अलग होना भी कठिन होता है। चौथा, लक्ष्यों की समानता, कॉमन गोल्स। प्राथमिक समूह के सदस्यों में उद्देश्यों और हितों की समानता पाई जाती है। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। उदाहरण स्वरूप, परिवार एक प्राथमिक समूह है जिनमें माता पिता अपने बच्चों की देखरेख करने में अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चों की देखरेख करना उनका अंतिम उद्देश्य है, बल्कि वास्तव में बच्चों का सुख दुख ही माँ बाप का सुख दुख बन जाता है। इस प्रकार प्राथमिक समूह में मैं की भावना की जगह वयम यानी वी की भावना पाई जाती है। पांचवा, स्वतः विकसित समूह, स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट। प्राथमिक समूह का जन्म स्वतः होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जानबूझकर और कुछ लक्ष्यों को सामने रखकर प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। दो चार व्यक्तियों में जब आपसी घनिष्ठता काफी बढ़ जाती है तो प्राथमिक समूह का स्वरूप स्वतः तैयार हो जाता है। छठा, प्राथमिक समूह में व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंधों की प्रधानता, पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप। प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध होते हैं। ऐसे समूहों में सदस्य अपने विचारों या भावनाओं को खुलकर एक दूसरे को सुनाते हैं। एक सदस्य को दूसरे सदस्य पर पूर्ण विश्वास और आस्था होती है। प्राथमिक समूह में संबंधों की स्थापना किसी बाह्य प्रलोभन अथवा बाह्य दबाव में नहीं होता है, बल्कि इनका विकास स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे एक परिवार में माता पिता भाई बहन के पारस्परिक संबंध जो किसी बाहरी प्रभाव के फलस्वरूप विकसित नहीं होते, बल्कि ये अपने आप स्वाभाविक रूप से होते हैं, इनकी प्रकृति आत्मिक होती है। सातवां, समाजीकरण के अभिकरण के रूप में। प्राथमिक समूह किसी व्यक्ति के जीवन में वैसा समूह है जहां उसका बचपन व्यतीत होता है। बचपन का समय व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा समय होता है जिस अवस्था में बच्चे को जो कुछ भी सिखलाया जाता है वह उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है। कूली ने प्राथमिक समूह कहना इसलिए पसंद किया है क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण या बुनियादी भूमिका होती है। आठवां, अनौपचारिक संबंध। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच का संबंध अनौपचारिक होता है। संबंध की घनिष्ठता संबंधों को अनौपचारिक रूप प्रदान करता है। साथ ही प्राथमिक समूह का संगठन भी बहुत हद तक अनौपचारिक ही होता है। यह सही है कि इसमें विभिन्न पदों की भिन्न भिन्न भूमिकाएं होती हैं, परंतु ये भूमिकाएं प्रायः परस्पर व्यापी यानी ओवरलैपिंग होती हैं। उदाहरण स्वरूप, संतान के लिए माँ जहाँ अभिभावक है वहाँ आवश्यकता पड़ने पर सेवा भी करती है, भोजन पकाती है तथा सही सलाह देती है। यही बात एक व्यक्ति अपने ऑफिस के उच्चाधिकारी से आशा नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ उनकी भूमिका औपचारिक होने के कारण पूर्व निर्धारित एवं निश्चित है। नौवा, सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी। प्राथमिक समूह एक विश्वव्यापी सामाजिक समूह है। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां प्राथमिक समूह नहीं पाया जाता हो। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि परिवार एवं मित्र मंडली जैसे सामाजिक व्यवस्था विश्व के प्रत्येक समाज एवं सामाजिक विकास के प्रत्येक चरणों या कालों में पाई जाती है। विश्व स्तर पर प्राथमिक समूह एक अस्थायी सामाजिक व्यवस्था है।